पृष्ठ संख्या 63। गांधी अंबेडकर रिश्ते। पृष्ठभूमि का अंतराल। महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर 20वीं शताब्दी के ऐसे दो भारतीय नाम हैं जिनसे लंबे समय तक भारतीय पीढ़ी प्रेरणा लेती रहेगी। इतिहास की विडंबना ऐसी है कि इन दोनों महान हस्तियों के रिश्ते अपने जीवन काल में इतने सुमधुर नहीं रहे, किंतु दोनों की देशभक्ति, समाज सेवा तथा देश समाज परिवर्तन की शक्तियों को आगे बढ़ाने में अतुलनीय योगदान को सदैव प्रणाम किया जाएगा। यह संयोग है कि दोनों का सार्वजनिक जीवन आरंभ अलग-अलग घटनाओं और अलग-अलग पृष्ठभूमि के मानसिक दबाव में हुआ, इसीलिए दोनों की संघर्ष की प्राथमिकताओं में थोड़ा अंतर है। दोनों ने ही अपने लक्ष्य की पूर्ति का आधार समाज परिवर्तन को ही माना, किंतु प्रथम चरण और द्वितीय चरण में अंतर दिखाई देता है। गांधी जी 1991 में बैरिस्टरी पास कर इंग्लैंड से वापस भारत आ गए थे। अंबेडकर का जन्म इसी वर्ष में हुआ था। गांधी जी की वकालत नहीं चलती थी, इसीलिए एक स्कूल में हाई स्कूल को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए 75 रुपये माहवार की नौकरी का आवेदन किया। उन्हें प्रबंधकों ने भर्ती करने से इनकार किया क्योंकि वे ग्रेजुएट नहीं थे। वे बंबई में वकालत छोड़कर राजकोट चले गए और औसतन 300 रुपये महीने की कमाई करने लगे। पोरबंदर के राणा साहब के सचिव और सलाहकार के रूप में गांधी जी के भाई काम करते थे। इनके भाई पर आरोप था कि वे राणा साहब को गलत सलाह देते थे। अंग्रेजों का पॉलिटिकल एजेंट गांधी जी के भाई के बहुत ही खिलाफ था। गांधी जी उक्त अंग्रेज अधिकारी से इंग्लैंड से ही परिचित थे। वे अपने भाई की सिफारिश में अंग्रेजी अधिकारी के कार्यालय समय लेकर मिलने गए। उक्त अधिकारी उनकी बात सुनते ही बिगड़ उठा और उनसे पूर्व परिचित होने के बावजूद अपने चपरासी से धक्के दिलाकर जबरन गांधी जी को दफ्तर से बाहर निकाला। अंग्रेजी अफसर शाही के खिलाफ गांधी जी के मन में गुस्सा करने की यह प्रथम घटना थी। सेठ अब्दुल करीम झावेरी, जो गुजरात के व्यापारी थे, का दक्षिण अफ्रीका में भी बड़ा कारोबार था। 40,000 के दावे में उनको अच्छे वकील की जरूरत थी। इस कंपनी के केस की पैरोकारी में $105 और प्रथम श्रेणी के आने जाने का टिकट लेकर गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए। 1893 में डरवन में कंपनी द्वारा प्रथम श्रेणी में यात्रा करने का टिकट बुक कराकर प्रिटोरिया जा रहे थे। मारिजबुर्ज रेलवे स्टेशन पर अंग्रेज कंडक्टर आए। उन्होंने गांधी जी को प्रथम श्रेणी के डिब्बे से निकालकर साधारण से यात्रा करने को कहा, क्योंकि काले लोग प्रथम श्रेणी में यात्रा के हकदार नहीं थे। गांधी जी ने उक्त डिब्बे का वैध मुसाफिर होने के नाते बाहर जाने से इनकार किया। फिर पुलिस ने उनका सारा सामान डिब्बे से बाहर फेंक दिया। उन्हें काफी बेइज्जत किया। उन्हें जाड़े की ठिठुरती रात स्टेशन के प्रतीक्षालय में बितानी पड़ी। इस घटना ने पूरे तौर पर उन्हें अंग्रेज नस्ल के खिलाफ ही कर दिया। पृष्ठ संख्या 64। इसके बाद से स्वदेश वापस आकर गांधी जी ने अपना संपूर्ण जीवन अंग्रेजी साम्राज्य, शाही और नस्लवादी के खिलाफ संघर्षों में निछावर कर दिया। 1916 में वाराणसी में काशी विश्वविद्यालय के शिलान्यास के शुभ अवसर पर अंग्रेज वायसराय की जानकारी में अंग्रेजी हुकूमत और व्यवस्था के खिलाफ शंखनाद किया। वह उनके वज्र जैसे संकल्प को दर्शाने के लिए काफी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के भी आरंभिक जीवन पर सामाजिक दबाव का प्रभाव पड़ा। अंबेडकर के पिता श्री रामजी सेना में महू छावनी से सूबेदार मेजर होकर सेवानिवृत्त हुए और बाद में उन्हें 1894 में लोक निर्माण विभाग में रत्नगिरी जिले में नौकरी मिली। फिर उनका तबादला सतारा जिले में हो गया। वे 1900 में अपनी 14वीं संतान भीमराव को स्कूल में प्रवेश दिलाने के लिए अनेक विद्यालयों में घूमे। कोई भी प्रधानाध्यापक इनके अछूत जाति के कारण विद्यालय में प्रवेश देने को राजी नहीं होता था। बहुत कठिनाइयों के बाद एक दर्जा में सतारा में एक प्राथमिक पाठशाला में प्रवेश मिला, जहां शर्त थी कि अंबेडकर कक्षा से बाहर दरवाजे के सामने बैठकर अध्यापक द्वारा पढ़ाई को स्वीकार करें। एक बार मसूर रेलवे स्टेशन से गोरेगांव एक बैलगाड़ी में बैठकर अंबेडकर और उनके भाई जा रहे थे। बैलगाड़ी का कोचवान ज्यों ही समझा कि दोनों मुसाफिर अछूत जाति के हैं, तो वह बैलगाड़ी से उतर पड़ा और कहा कि आप लोगों के साथ चलने में मुझे भी छूत लग जाएगी। अंबेडकर जब हाई स्कूल की पढ़ाई करने सतारा से बंबई गए, तो वहाँ भी उन्हें स्कूल में बच्चे टिफिन का भोजन छूने नहीं देते थे। जब वे अपना मुंह खोलते तो चपरासी ऊपर से गिलास का पानी मुंह में डाल देते। अछूत जाति के कारण उनका जो तिरस्कार हुआ, उससे उनकी भावना ब्राह्मणवाद के खिलाफ विद्रोही हो गई। यहाँ तक कि 1917 में विदेश की पढ़ाई पढ़ने, डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने के बाद अमेरिका से वापस आने पर जब उन्हें 1917 में महाराज बड़ौदा ने मिलिट्री सचिव बनाया, तो कोई भी व्यक्ति उन्हें रहने के लिए आवास भाड़े में नहीं देता था, क्योंकि वे दलित जाति से थे। उनकी विद्वत्ता, प्रतिभा और पद से समाज पर कोई प्रभाव नहीं था। कोई इन्हें अगवानी करने भी नहीं गया। किसी होटल अथवा हॉस्टल में उन्हें जगह नहीं मिली तो एक पारसी होटल में ठहरे। उन्होंने अपने आवास संबंधी शिकायत महाराज बड़ौदा से की। उन्होंने अपने प्रमुख प्रधानमंत्री को आवास देने संबंधी संस्तुति भी कर दी, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर बिना किसी आवास के रहे और पुनः गुस्से में बड़ौदा छोड़कर बंबई वकालत करने चले गए। बाद में और जिस महाविद्यालय में कानून के प्रवक्ता बने, वहाँ जातिगत कारणों से उन्हें जो अपमान झेलना पड़ा, उसकी भी लंबी कहानी है। इसीलिए हिंदू धर्म के प्रति विद्रोही होते चले गए। 1919 में ममफोर्ड सुधार के समय अंबेडकर ने मुसलमान और सिखों की तरह दलितों के लिए पृथक मताधिकार की मांग कर दी थी। मताधिकार के प्रश्न पर साउथ बोडो कमेटी के समक्ष 27 जनवरी 1919 को डॉक्टर अंबेडकर ने अपना साक्ष्य दिया। उन्होंने सुधार समिति की रिपोर्ट के समक्ष कहा कि अंग्रेज लोग हमेशा कहते रहे हैं कि जाति और समुदाय में विभक्त भारतीय समाज प्रतिनिधिक सरकार के लिए उपयुक्त नहीं है। भारत के प्रबुद्ध राजनेता इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते। वे कहते हैं यूरोप में भी सामाजिक बंटवारा है। एक, डॉक्टर अंबेडकर स्पीचेज एंड राइटिंग्स वॉल्यूम 9 कॉमा पृष्ठ संख्या 248। पृष्ठ संख्या 65। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रचलित जाति आधारित पक्षपात की तुलना भारतीय सामाजिक बंटवारे से की जा सकती है। भारत में आपराधिक षड्यंत्र द्वारा जाति भेद पैदा किया गया है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जातिगत विभाजन को स्थायित्व दिया गया है। कोई पोलैंड का है, कोई डच है, कोई स्वीडन का है, कोई जर्मन का, रूसी आदि खेमे हैं जिनकी अलग-अलग भाषा, धर्म तथा परंपरागत मान्यताएं हैं। यदि सामाजिक विभाजन किसी देश को मताधिकार से वंचित करने के लिए पर्याप्त कारण है, तो यह निषेध प्रथमतः अमेरिका में होना चाहिए। लेकिन यदि यह पद्धति अमेरिकी समाज के लिए उपयुक्त है, तो क्यों नहीं भारत के लिए? भारत का सामाजिक विभाजन विभिन्न प्रकार का है। उनके रहन-सहन, विश्वास, उद्देश्य, मान्यताएं, भावनाएं समान हैं। ज्ञान और विवेक में समान सोच है। समबोध तो समान आबादी, सामाजिक व राजनैतिक परंपरा के लिए आवश्यक तत्व हैं। इसमें समान संप्रेषणीयता और परस्पर विश्वास की भावना होती है। भारत के प्रबुद्ध नेताओं का ऐसा अभिमत है। लेकिन हिंदू किसी न किसी जाति का सदस्य होता है। जाति इतनी अप्रासंगिक और एकाकी है। हिंदू होने का भाव मात्र गैर हिंदुओं के प्रति उसके व्यवहार का निदेशक तत्व है। किंतु हिंदू वर्ग के आपसी प्रचलन के लिए जाति का भाव ही मुख्य कारक है। दो हिंदुओं के बीच व्यवहार में जाति दीवार रूप में खड़ी है। संपूर्ण हिंदू समाज छूत और अछूत के दो रूप में विभाजित हैं। छुआछूत प्रथा ने अछूतों को जाति में मिलाने पर प्रतिबंध लगा रखा है। इसीलिए हिंदुस्तान विभाजन छूत अछूत हिंदू मुसलमान ईसाई पारसी और यहूदी के रूप में है। कोई सरकार जो जनता के लिए हो लेकिन जनता द्वारा न हो, तो वह समाज में कुछ लोगों के राजा और कुछ को प्रजा रूप में विभाजित कर देगी। किसी भी व्यक्ति को समाज में अपनी भूमिका निर्धारण की खुली छूट हो तथा प्रत्येक व्यक्ति समान अवसर और पहल से अपनी भूमिका निर्धारित कर सके, ऐसा अवसर प्रदान किया जाए। सरकारों के लिए यह सही है कि सरकार अपनी प्रत्येक भूमिका में सभी का हर समान अपेक्षित भरोसा नहीं कर सकती। लेकिन लोकतंत्र के हित में बहुतों के बलिदान पर थोड़े के हितों की देख रेख भी नहीं होनी चाहिए। केवल मतदाता होना पर्याप्त नहीं, अपितु कानून निर्माता होना भी जरूरी है। अन्यथा थोड़े से कानून निर्माता सदा सर्वदा के लिए अपने मतदाताओं के मालिक बने बैठे रहेंगे। उन्होंने कहा, क्षेत्रीयता आधारित ब्रैकेट में टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी ब्रैकेट क्लोज में छोटे समूहों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता। भारत देश का मतदाता केवल मतदाता नहीं, अपितु वह एक वर्ग अथवा जाति का हिस्सा है। वोट देते समय उसका वर्ग अथवा जाति महत्वपूर्ण है, इसीलिए वह एक दिशा में ही वोट देगा। बड़ी जाति का व्यक्ति जीत कर कानून निर्माता बनेगा और छोटे वर्ग के व्यक्ति को पराजय ही देखनी होगी तथा उसकी त्रासदी यथावत रहेगी। सामाजिक विभाजन में पूर्वग्रह व्याप्त रहता है। इसका कोई उचित समाधान नहीं बताया गया है। केवल कहा गया है कि प्रोपोर्शनल ब्रैकेट में आनुपातिक ब्रैकेट क्लोज प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इस पद्धति से हमारा उद्धार संभव नहीं है। इसीलिए वे अल्पसंख्यक जो संयुक्त मतदाता क्षेत्र से चुनाव नहीं जीत सकते, उनके लिए सुरक्षित सीटें बहुउद्देशीय क्षेत्रों में हो या पृथक सांप्रदायिक मतदान का अधिकार हो। मुसलमान बहुउद्देशीय क्षेत्रों से जीतते, बंटवारे की जड़ें हिंदू मुसलमान में गहरी हैं। सांप्रदायिक चुनाव तो मजबूत तथ्य हैं। पृष्ठ संख्या 66। हिंदुओं में एक वर्ग कहता है कि अछूतों को अपनी आवाज बुलंद करने के लिए काउंसिल हॉल में उनके प्रतिनिधि होने चाहिए। सवर्ण हिंदुओं में बहुतेरे ब्राह्मणी धारा के गुलाम नहीं रह सकते, इसीलिए गैर ब्राह्मण सवर्णों का भी अलग से प्रतिनिधित्व हो, क्योंकि गैर ब्राह्मण भी शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हैं। बौद्धिक और सामाजिक वर्चस्व ब्राह्मणों का है, वह केवल गैर ब्राह्मणों को ही त्रस्त नहीं करता, यह सभी को प्रभावित करता है। गैर ब्राह्मणों के अस्तित्व रक्षा की अलग से पड़ताल हो, गैर ब्राह्मणों का अलग से मताधिकार जरूरी नहीं, क्योंकि वे गैर ब्राह्मणी सामूहिक इच्छा का प्रतिनिधित्व नहीं करते। उन्होंने आंकड़ों से सिद्ध किया कि लिंगायत मराठे किसी भी हालत में ब्राह्मणों से मतदाता रूप में कम नहीं हैं, लेकिन दलित तो बहुत पीछे हैं। प्लेटो ने कहा था, गुलाम वह है जिसका आचार व्यवहार किसी सबल पक्ष के निर्देश पर संचालित होता है। इस परिभाषा की कसौटी पर अछूत सबसे बड़े गुलाम हैं। वे कभी अपनी दशा सुधारने का स्वप्न भी नहीं देखते। वो तो अपनी दुर्दशा के लिए किसी से कोई शिकायत भी नहीं कर सकते। वे उच्च वर्गों पर इस बात का दबाव भी नहीं दे सकते कि वे उनके साथ आदर सूचक वह व्यवहार करें जो एक मनुष्य दूसरे के साथ करता है। उन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंसी का उदाहरण देते हुए कहा कि 1911 की जनगणना के अनुसार इस प्रेसिडेंसी में अछूतों की आबादी 21,58,699 थी, अर्थात पूरी आबादी का 8%। इसीलिए हमें यहाँ की धारा सभा में 8% आरक्षित सीटों पर प्रतिनिधित्व मिले। कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक पृथक निर्वाचन स्वीकार किया है, लेकिन अछूतों के लिए नहीं माना है। कांग्रेस में भी व्यवहार में परिवर्तनवादी और यथास्थितिवादी हैं। उनका कहना है कि आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन अलग-अलग धाराएं हैं, इसमें कोई एका नहीं है। उनके अनुसार सामाजिक और राजनैतिक दो पहनावे हैं, यह मौसम की आवश्यकता अनुसार पहने जाएंगे। कानून साज असेंबली पुरानी इच्छा अनुसार दुकान नहीं है, यह तो समाज का भविष्य बनाने वाली संस्था है। अछूतों को सवर्णों के हाथ में आई सत्ता से बहुत उम्मीदें नहीं हैं, यद्यपि वे अछूतों के खिलाफ सत्ता का इस्तेमाल नहीं करेंगे, किंतु वे इनके उद्धार के लिए भी सत्ता का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कोई धारा सभा जिसमें सवर्ण बहुमत में होंगे, वह सवर्ण हिंदुओं के आधिपत्य को खत्म करने, गली कुओं मंदिरों में अछूतों के प्रवेश, अंतरजातीय कानूनों के हक में कानून नहीं बनाएंगे। कोई भी विधायिका एक सुनिश्चित सामाजिक दशा की उपज होती है, इसीलिए समाज की सोच के अनुसार ही वह कानून बनाती है। ऊंची जाति में उत्पन्न विधायक निम्न जातियों के उचित प्रश्न भी विधायिका में नहीं आने देते। 1916 में दाता भाई ने इम्पीरियल विधानमंडल में अछूतों की दशा सुधारने का विधेयक पेश किया। उनका विधेयक गिर गया और वे विधानमंडल में पराजित भी हुए। उनके स्थान पर खापरडे आए, जिन्होंने लिखा कि जो लोग अछूतों के उद्धार की बात करते हैं या काम करते हैं, वे स्वयं गिरे हुए लोग हैं। भारत में राष्ट्रवाद के उदय से जिन लोगों की अछूतों के प्रति हमदर्दी है, वे पीछे हो गए। राजनैतिक आंदोलनों ने सामाजिक सुधार कार्यक्रमों को पीछे कर दिया। प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज आदि संगठन इतिहास की वस्तु बन गए। शिक्षा एक वर्ग में सिमट गई, इसीलिए अछूतों को सवर्णों की मर्जी पर न छोड़ा जाए, अपितु उन्हें अपना भाग्य सवारने का अवसर दिया जाए। एक, डॉक्टर अंबेडकर, स्पीचेज एंड राइटिंग्स, वॉल्यूम 9, पृष्ठ संख्या 268।